मेरे अजीज़ दोस्तों नमस्कार। आज 14 अगस्त 2019 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 3 नौजवान मित्रों का जिन्होंने एकेडमी की 10 से 24 अक्टूबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं मनोज चौहान, आपका गांव है भटकोल जिला मऊ उत्तर प्रदेश, नीलेश चौधरी, आपका गांव है कललिया जिला रतलाम मध्य प्रदेश, और सुयस कार्तिक भोपाल मध्य प्रदेश से। दोस्तों आज के मुख्य विषय के तहत मैं भारत की जो राजनीतिक सुदृढ़ता अभी दिखाई दे रही, जो मजबूती दिखाई दे रही है, इस पर कुछ बातें करूंगा। लेकिन आइए पहले दूसरी खबरों को देख लेते हैं। न्यूज में आपने सुना होगा राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में, ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज है। मुझे लगता है कि सिविल सर्विस आईएएस के एग्जाम के लिए भले ही यह महत्वपूर्ण न हो, लेकिन जो दूसरे एग्जाम होते, चाहे वो स्टेट सिविल सर्विस हो या दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, उनकी दृष्टि से मुझे लगता है कि थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। और न्यूज यह थी कि 2022 में बर्मिंघम में, जो इंग्लैंड में ब्रिटेन में है, वहाँ राष्ट्रमंडल खेल होने जा रहे हैं और उस राष्ट्रमंडल खेल में महिला क्रिकेट को शामिल किया गया है। 2020 महिला क्रिकेट में जो 2020 का मैच होगा उसे शामिल किया गया है। दोस्तों ये जो राष्ट्रमंडल शब्द है ये आपके इंटरनेशनल रिलेशन के लिए भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, तो मैं बहुत ही संक्षिप्त में थोड़ी सी यहाँ जानकारी दे दूँ। देखिए राष्ट्रमंडल उन देशों का समूह है जिस पर कभी ब्रिटेन का शासन रहा है। भारत पर ब्रिटेन का शासन था तो भारत राष्ट्रमंडल देशों का समूह था। आपको मालूम है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से डीकॉलोनाइजेशन की प्रोसेस शुरू हुई, जिसे आप कह लीजिए कि उपनिवेशीकरण समाप्त होने शुरू हुए। उसी समय के बाद से दुनिया के देश आज़ाद होने शुरू हुए। उस समय जब देश आज़ाद होने लगे तो ब्रिटेन के दिमाग में एक बात आई कि हमने जिन देशों पर शासन किया है क्या उनका हम एक संगठन बना सकते हैं। तो कोशिश की गई तो ज़्यादातर देशों ने स्वीकार ही किया कि ठीक है हम एक साथ रहेंगे और जो ब्रिटेन है उसका हेड रहेगा। लेकिन याद रखिए कि इसके बावजूद हम और किसी भी देश की सॉवरेंटी पर, कम से कम भारत के बारे में तो हम कह सकते हैं कि सॉवरेंटी पर कोई फर्क इससे नहीं पड़ता है। देखिए अगर हम ब्रिटेन ने हम पर शासन किया और हम आज राष्ट्रमंडल संगठन के सदस्य हैं तो ब्रिटेन उसका हेड है, तो इससे यही लगता है ना कि हमारी जो सार्वभौमिकता है उस पर अभी कहीं ना कहीं ब्रिटेन का हस्तक्षेप है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे देश राष्ट्र का समूह जो है राष्ट्रमंडल देश कहलाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जब राष्ट्रमंडल देशों में जब हमारे कोई एम्बेसडर भेजे जाते हैं या एक दूसरे देशों में, तो उन्हें हम कहते हैं हाई कमिश्नर, उच्चायुक्त, अदरवाइज तो एम्बेसडर कहलाते हैं। लेकिन वहां होते वो एम्बेसडर ही हैं, काम सब कुछ वही कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें हम कहते हैं उच्चायुक्त। जहां तक राष्ट्रमंडल खेलों का सवाल है, पहले 1930 में इसकी लगभग शुरुआत हुई थी। उस समय ये कहा जाता था, 1950 तक इस खेल का नाम ही था, देखिए ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। इससे आपको और क्लियर हो गया होगा कि राष्ट्रमंडल क्या है। 1950 तक ये था, फिर इसके नाम बदलते रहे। और एक दो बातें और कि इसमें अभी 53 कंट्रीज हैं राष्ट्रमंडल देशों में, 53 बहुत है। मतलब आप देखिए कि लगभग अगर 200 देश आप माने तो 25% राष्ट्रमंडल देशों की सदस्यता है। दिल्ली में भी ये एक बार हो चुका है, 2010 में दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल हुए थे। और अभी भी जब करप्शन की बात आती है तो आप देखते हैं कि राष्ट्रमंडल खेलों में बहुत करप्शन हुआ था, तो उसकी चर्चा होती है। इससे पहले भारत में एशियाड खेल हुए थे, एशियाड गेम होती जिसे एशियाई गेम कहते हैं। और दिल्ली का जो एक एरिया है साउथ दिल्ली में है, खेल गांव कहा जाता है, एशियाड विलेज भी कहा जाता है। याद रखिए वो एशियाड के लिए है, वो राष्ट्रमंडल के लिए, क्योंकि कई स्टूडेंट से जब मेरी बात हुई तो वो राष्ट्रमंडल खेल और एशियाड गेम्स में थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाते हैं। राष्ट्रमंडल के बारे में मैंने आपको बताया है, जो एशियाड है वो सीधी सी बात है कि एशिया महाद्वीप का गेम होता है। तो दोस्तों ये था राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में। आपने न्यूज में सुना कि जो सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है उसके 13 में से 10 सदस्य बकायदे अपनी पार्टी बदल करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। पिछले कुछ समय से आप महसूस कर रहे होंगे, स्पेशली जब से लोकसभा के चुनाव हुए हैं तब से बहुत सी पार्टियों के MLA और MP या उस तरह से कार्यकर्ता जो मेंबर्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ठीक है जो MLA और MP नहीं है वो अगर किसी भी पार्टी में शामिल होते हैं तो वो हमारी चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं एमपी एमएलए अगर अपनी पार्टियों को छोड़ करके दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, और खासकर भारतीय जनता पार्टी में की बात इसलिए हो रही है कि वो अभी सत्ता रूढ़ पार्टी है, अभी उसके पास पावर्स हैं, तो उस दल बदल को लेकर के कई तरह के सवाल मन में उठने लगते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तेजी के साथ दल बदल हो रहा है उसके हिसाब से आप कह सकते हैं कि मेंस के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक तैयार हो रहा है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि खासकर दल बदल को लेकर के जो दो कानून भारत में आया, पहला अधिनियम आया और इसके बाद फिर संशोधित अधिनियम आया, उस पर आप अच्छी तरीके से तैयारी कर लें, प्री में भी वो टॉपिक आपके काम आ सकता है। मित्रों, एक और खबर थी और वो ये कि NLFT नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, इसके बारे में हम लोगों ने कल थोड़ी सी बात की थी, आपको ध्यान होगा मैंने बताया था कि कैसे केंद्र सरकार राज्य सरकार और इस फ्रंट के बीच में समझौता हुआ था 3 दिन पहले, और न्यूज़ में आपने कल सुना कि इसके 88 जो विद्रोही थे, रिबेलियंस थे, उन्होंने वहां के जो मुख्यमंत्री हैं त्रिपुरा के हमारे बिप्लव कुमार देव जी, उनके सामने सरेंडर किया है और उस तरह से वो मुख्य धारा में आ रहे हैं। अब आप देखें कि एक अलग तरीके से मैं यहाँ इस बात को आपके सामने रख रहा हूँ, ये न्यूज़ अदरवाइज आपको एक सामान्य सी न्यूज़ लगी होती अगर कल हम लोगों ने सिक्योरिटी यानी कि किस तरह से आपके सिलेबस में सुरक्षा है, किस तरह से सुरक्षा से हर साल 3 से 4 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ये मैंने बात की। इसके बाद फिर मैंने बताया कि नहीं, ये जो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है वो इस तरह के उग्रवादी गतिविधियों का केंद्र बन गया, और उधर फिर बहुत से हमारे बॉर्डर स्टेट भी, बॉर्डर नेशंस भी हैं, तो हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया है वो। और इसके बाद फिर मैंने त्रिपुरा के बारे में बात की थी, तो कल आपके दिमाग में एक बात दर्ज कर गई होगी, चलिए कंटेंट भले ही ना रहे, कि नहीं नहीं त्रिपुरा में जो इस तरह की घटना घट रही है वो सुरक्षा के टॉपिक से जुड़ी हुई घटना है, राइट। इसके बाद कल फिर आपने ये खबर सुनी कि 88 लोगों ने सरेंडर किया, आत्मसमर्पण किया, तो आपने खुद महसूस किया होगा कि आपको लगा कि नहीं नहीं यार, ये तो इंपॉर्टेंट घटना है, इसे हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, अदरवाइज आपने इसको वैसे ही छोड़ दिया होता, क्या ऐसा नहीं है? तो मित्रों, यही होता है डेली न्यूज को सुनने का फायदा, अपने सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से जान लेने का लाभ, और अंततः मैं कह सकता हूं कि डेली ऑडियो लेक्चर जो आपको एम्पावर्ड करता है। मित्रों, सोशल मीडिया को लेकर के भी आप थोड़े से सतर्क हो जाए। देखिए, सोशल मीडिया पर तो चलिए अभी चल ही रहे, फिलहाल आप देख रहे हैं कि कश्मीर में इंटरनेट और क्या आपके व्हाट्सअप ये सब बंद कर दिए गए हैं, तो यहाँ हम थोड़ा सा ये जानने की इस रूप में इस टॉपिक को देखेंगे कि ठीक है, सोशल मीडिया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, नाम ही है सोशल मीडिया, लेकिन जब नेशन इंटरेस्ट की बात आती है, राष्ट्रहित की बात आती है, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है, या लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है, तो क्या सरकार के पास ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि वह इन्हें प्रतिबंधित कर सके? इस पर थोड़ा सा आप लोग विचार कीजिएगा, मुझे लगता है कि आगे चलकर के इस पर हो सकता है कि कुछ लेख आपको पढ़ने को मिले, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। अब आता हूं मैं आज के मुख्य विषय पर, फ्रेंड्स, जो है भारत की राजनयिक मजबूती। इस विषय को मैंने क्यों चुना है आप सब बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, खासकर जब से जम्मू कश्मीर में से अनुच्छेद 370 हटा लिया गया है और उस तब आगे की गतिविधियों से आप बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं, तब से आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान कितनी बुरी तरह से बौखलाया हुआ है, राइट। अपनी उस बौखलाहट के तहत ही वो अलग अलग मंचों पर गया है ना, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है वहां भी जाकर के उसने गुहार लगाई और देशों से भी उसने बातचीत की, लेकिन कल के दूरदर्शन न्यूज में आपने महसूस किया होगा उसे सुन करके कि हर जगह से उसे मात खानी पड़ी है, और यहां तक कि उनके अपने विदेश मंत्री को यह स्वीकार करना पड़ा कि नहीं, इस मामले में कोई आपका स्वागत करने के लिए माला लेकर नहीं खड़ा है, इस मामले में अब आप कुछ नहीं कर सकते। मित्रों, ऐसा क्यों हुआ? नो डाउट कि जो 370 अनुच्छेद का मामला है, जो कश्मीर का मामला है, वो पूरी तरह से 100% भारत का आंतरिक मामला है, किसी दूसरे देश को इस पर कुछ उंगली उठाने का, कहने का अधिकार ही नहीं है, पहली बात। अदरवाइज फिर हमारी सार्वभौमिकता कैसे होगी, हमारी सॉवरेंटी कैसे होगी? दूसरी बात, अगर पाकिस्तान को कुछ ऐसा लगता भी है, चलिए भले ही गचली उसको लग रहा है और गलत तरीके से ही सही, लेकिन लग रहा है ठीक है। तो बकायदे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो शिमला समझौते से लेकर आगे भी जो समझौते होते रहे हैं, उनमें बड़े स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दोनों देश अपने मामलों को आपसी बातचीत के जरिए सुलझाएंगे, तीसरे किसी के पास इसमें जाने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर पाकिस्तान जा रहा है। तो अब आप देखिए कि ये दो पॉइंट भारत के पास इतने मजबूत हैं कि इसको आधार बनाने के बाद कोई देश कैसे पाकिस्तान का सपोर्ट कर सकता है। और जो पाकिस्तान को अब जब सबसे ज्यादा जो निराशा हुई है फिर से वो चाइना से हुई है। न्यूज में आपने देखा कि कैसे हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी अभी 2-3 दिन पहले चाइना गए थे और वहां उन्होंने बहुत स्पष्ट कह दिया कि ये भारत का आंतरिक मामला है, और चाइना ने भी इसे स्वीकार किया कि हाँ ये भारत का आंतरिक मामला है। इसके बाद फिर आप देखिए कि बकायदे जो इस्लामिक संगठन है जिसमें कि हमारी विदेश मंत्री उस समय सुषमा स्वराज जी थी, उनको आमंत्रित किया गया, पहली बार ऐसा हुआ जिस पर हम लोगों ने विस्तार से बातें की थी। उन इस्लामिक देशों के भी कई, उस संगठन के भी कई देशों ने सीधे सीधे कह दिया कि नहीं ये भारत का आंतरिक मामला है और इसमें हस्तक्षेप करने की या उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो अब पाकिस्तान की जो स्थिति है वो आप कह लीजिए कि एक तरह से एक मुरझाए चेहरे जैसी स्थिति हो गई कि अब वो किस तरह से अपना चेहरा बचाए अंतर्राष्ट्रीय जगत के सामने, वो कैसे अपने को खड़ा रखे। लेकिन चलिए वो एक पक्ष है। तो मित्रों यहां ये जो सिम्टम्स मैंने अभी आपको बताए हैं, कुछ बातें जो आपके सामने रखी हैं, ये स्पष्ट कर रही हैं कि भारत की दूसरे देशों के साथ जो स्थिति है या यूं कह लें कि जो राजनयिक संबंध हैं उनमें कितने दृढ़ता आई है। देखिए सिविल सर्विस में कभी कभी मेंस में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछा जा सकता है कि खासकर कश्मीर से 370 हटाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत और पाकिस्तान के संबंधों को लेकर के जो चर्चा हुई है, क्या आपको लगता है कि इससे भारत की राजनयिक सुदृढ़ता मजबूत हुई है, राजनयिक संबंध मजबूत हुए हैं? इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और इसका उत्तर आपको कहां से मिलेगा। खासकर इसी उत्तर को ध्यान में रख करके मैं कुछ घटनाएं आपको बता रहा हूं कि जब ये घटनाएं आपके दिमाग में आएंगी तो इनकी चर्चा करते हुए फिर आप अपना कंक्लूजन देंगे, निष्कर्ष देंगे कि इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि भारत की राजनयिक मजबूती बढ़ी है, राजनयिक संबंध बेहतर हुए हैं। अमेरिका को भी ये कहना पड़ा था, आपको ध्यान होगा कि कुछ दिनों पहले अमेरिका के ट्रंप साहब ने कह दिया था कि मतलब भारत के प्रधानमंत्री ने मुझसे कहा है कि मध्यस्थता आप कीजिए इस मामले में, भारत ने उसको बड़ी सुदृढ़ता के साथ नकारा, बाद में ट्रंप जी ने उसे वापस लिया या नहीं लिया जो भी है, लेकिन अमेरिका ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो ये भारत की ताकत को दिखाता है। तो यहां दोनों स्थितियों में भारत ताकतवर दिखाई दे रहा है, भारत एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में तो आगे बढ़ ही रहा है, साथ ही डिप्लोमेटिक लेवल पर भारत जिस तरह की कोशिशें कर रहा है वह भी कहीं ना कहीं उसकी दूरदृष्टि का परिचय देता है। तो मित्रों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसमें आज हिंदू की एक क्लिपिंग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एथिक्स पर, इसे आप लोग जरूर देखिएगा। मेरी कोशिश होगी कि इसका मैं हिंदी वर्जन आप लोगों को उपलब्ध कराऊं। तो दोस्तों ईमेल लिखने वाले सभी को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं सोनू कुमार गंगौर बिहार से, अनादि वर्मा और दिलकुश यादव। तो फ्रेंड्स इससे पहले कि मैं आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करूं, कल 15 अगस्त है, हमारा स्वतंत्रता दिवस है, तो इस स्वतंत्रता दिवस की पूर्व तिथि पर मैं आप सभी अपने प्रिय श्रोताओं को, अपने सभी प्रिय श्रोताओं की ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और पूर्व बधाइयां भी देता हूं कि आप सब इस स्वतंत्रता दिवस का भरपूर आनंद लें, अपने हृदय के अंदर राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र सम्मान की भावना का आह्वान करें। तो मित्रों इसी के साथ ही अब कल के लिए मैं इजाजत चाहूंगा, परसों आप सबसे फिर मुलाकात होगी और बातें होंगी, मेरा अभिवादन स्वीकार करें, नमस्कार।